जोड़ लीजिए हाथ, कर लीजिए आंखें बंद। एक आप और एक भगवान, दोनों के बीच में कोई नहीं। और फिर कीजिए भगवान के चरणों का ध्यान। चरणों से ध्यान शुरू कीजिए और फिर भगवान का। बहुत सुंदर माला देखिए, फिर बांसुरी देखिए, फिर मुख देखिए, ऐसे आस्ते आस्ते ऊपर दर्शन कीजिए। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सो आप सबका स्वागत है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री राधा भैरनेश्वर मंदिर सायंकाल के भगवद गीता के सत्संग में वैदिक सिविलाइजेशन में वैदिक लिटरेचर में दो रास्ते बताए हुए हैं। देयर आर टू पाथ्स इन वैदिक लिटरेचर। वन इज कॉल्ड निवृत्ति, अदर इज कॉल्ड प्रवृत्ति। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग, निवृत्त मीन्स गेटिंग रिलीव्ड, निवृत्त होना, दैट इज फॉर सन्यासीज। दोज हु आर कंप्लीटली रिनाउंस इज कॉल्ड निवृत्त। प्रवृत्ति इज फॉर द ग्रस्तास। प्रवृत्ति मीन्स दे बिकम प्रवृत्त। प्रवृत्ति मीन्स दे आर इंक्लाइंड टू डू their own duties and simultaneously they also do the worship। अपने काम करते करते साथ भगवान की भक्ति करेंगे, उसको निवृत्ति, उसको प्रवृत्ति मार्ग कहते। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग वेद व्यास ने सब वेदों में पहले वर्णित कर दिया है। ये तो पहले से पढ़ा है, तो फिर भगवत गीता देने की क्या जरूरत थी? What is the need for Bhagavad Gita when the already two paths are described by Vyasadeva in Vedic literature? Pravritti aur Nivritti, ye do marg pehle se hai. To Bhagavad Gita ki kya avashyakta thi? Bhagavan Sri Krishna revolutionary hai, krantikar hai. भगवत गीता इज ए रिवोल्यूशनरी स्क्रिप्चर. ये बीच का रास्ता है, भागवत मार्ग. भागवत मार्ग निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों के बीच का भागवत मार्ग. इसमें दोनों काम, दोनों चल सकते हैं साथ में. भागवत मार्ग मीन्स भक्ति मार्ग. तो भगवत गीता भक्ति भागवत मार्ग है, दोनों के बीच का है, जिसमें सबको अधिकार है. कैसे? निवृत्ति मार्ग में केवल रिनाउंस आर्डर वाले लोगों को अधिकार है, सबको अधिकार नहीं है. जैसे वेद उपनिषद पढ़ना ज्ञान मार्ग, केवल ब्राह्मण होते हैं उनको अधिकार, और किसी को नहीं है. और प्रवृत्ति मार्ग में कुछ वर्णों को अधिकार है, सबको नहीं है. अब भगवान श्री कृष्ण जब कोई मार्ग देने जा रहे हैं तो वो है भागवत मार्ग देने, जिसको सबका अधिकार है, सबको अधिकार है उसमें. कैसे भक्ति, कैसे है भक्ति या भागवत मार्ग? जैसे यथा निरप, राजा की सेवा करने का सबको अधिकार होता है ना. राजा के राज में रहने वाला, झाड़ू निकालने वाला भी राजा की सेवा कर सकता है. खेत वाला भी सेवा कर सकता है अनाज पैदा करके, कारखाने वाला भी कर सकता है. सबको राजा की सेवा करने का अधिकार होता है. यथा नर्प, जैसे राजा की सेवा होती है, ऐसे भक्ति सबको करने का अधिकार है. भक्ति करने का अधिकार सबको है. ये विशेषता है भगवद गीता की. और भगवान ने स्वयं नवे अध्याय में पांच प्रकार के अयोग्य पुरुषों को भक्ति करने का अधिकार दिया है. अपीचेत से दुराचारो, सुदुराचारी. दुराचारी का मतलब जिसका आचरण अच्छा नहीं है, बैड करेक्टर. लेकिन सुदुराचारो मतलब 100 बैड करेक्टर के पूरी दुनिया में गिन लो, 100 का इकट्ठा करके उनमें से 3 निकालो, 3 में से जो नंबर 1 है वो सुदुराचारी है. सुदुराचारी मीन्स सुपरलेटिव डिग्री का बदमाश. अपीचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर मेरा भजन अनन्य भाव से करता है, ये भक्ति का अनन्य भाव का मतलब भक्ति. जो मेरा भजन भक्ति से करता है, साधु एवं मंतव्य, उसको साधु मान लो, उसको साधु मान लो. क्यों साधु माने उसको? अर्जुन ने पूछा, उसको साधु माने दुराचारी को? भगवान कह रहे सम्यक विवस्तो ही सा, वो सही जगह पे आ गया. सम्यक मतलब ठीक. विवस्तो मतलब उसने स्थान जो लिया है वो बिल्कुल ठीक है, वो अब सही जगह पे आया. इसको उदाहरण कैसे देंगे समझने के लिए? एक आदमी रास्ते में जाता हुआ गटर में गिर गया है, सारा कचरा लगा हुआ है उसके ऊपर. लोग देखते हैं तो दूर से देखें बहुत गंदा लग रहा है. वो जाके एक टैप खोल के उसके नीचे बैठ जाता है नहाने के लिए. फिर कहते अरे भाई तुमसे, तुम्हारे ऊपर कीचड़ पड़ी है. वो क्या कहेगा? अरे भैया मैं पानी के नीचे बैठा हूं, साफ हो रहा हूं ना, मैं साफ हो ही रहा हूं ना, अब तो मैं सही जगह पे आ गया हूं, तो अभी धुल जाऊंगा ना, कोई देर थोड़ी लगी. तो आई एम एट ए राइट प्लेस, आई एम सिटिंग अंडर शावर, तो साफ हो रहा हूं. तो भगवान कहते मेरी भक्ति करता, अब वो तो मेरे पास आ गया है ना, अब उसको साधु मान लो, क्योंकि यहां तो साधु हो ही जाएगा. तो अर्जुन पूछता है कितना टाइम लगेगा? तो भाई कई सालों से दुराचार्य. अब भगवान को थोड़ा सा रोष आ गया. रोष मीन्स कृष्ण आर्टिफिशियली बिकम लिटिल लेस देन एंग्री. कितना टाइम लगेगा मेरे पास आने के बाद? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक क्षण में धर्मात्मा बन जाएगा. महीना साल कमरे को बंद करके रख जाओ, अंधारा उसमें पड़ा हो, अंधेरा पड़ा हो, डार्कनेस हो, बटन दबाने के बाद एकदम बिजली आएगी कि कहेगी कि एक साल से बैठे थोड़ी देर के बाद आएंगे, ऐसे होगा क्या? तो जस्ट क्विक बटन दबा तो लाइट आ गया। सो सिमिलरली कितने भी दिनों का दुराचारी है लेकिन मेरे पास आ गया तो एकदम सदाचारी बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति निगच्छति, अरे उसको अनादि काल तक रहने वाली शांति मिलेगी। और फिर भगवान ने अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन ने कहा कि लोग कहेंगे कि इतना जल्दी कैसे धर्मात्मा बन सकता है, बहुत पापी था पहले। बोला प्रतिजानी कौन ते नवे भक्त प्रणसद, जाओ ढोल उठाओ संसार के अंदर जाके तुम बड़े उत्साह के साथ बड़े शिखर के ऊपर खड़े होकर दुनिया वालों को कहो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तुम जाके प्रतिज्ञा करो। अर्जुन को भगवान ने उत्साह से के साथ कहा तुम जाके दुनिया में प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। ये हो गया इस जन्म का दुराचारी। फिर भगवान कहते हैं अपिचेत से दुराचार के बाद कहते हैं ये पाप योनि है, ये तो इस जन्म का दुराचारी है। पाप योनि मतलब दूसरे पुराने जन्मों का पापी, इस जन्म का नहीं। निषाद चोर हैं, डाकू हैं, जन्म का नहीं, नीच जन्म, जन्म नीच जन्म हो गया है। यवन है, निषाद है, क्रात है, हुण है, ये भागवत में इनके नाम आए हैं। ये नीच जोनी कहलाते हैं, इनके नीच जोनी का मतलब जन्म से ही पापी हैं। एक जन्म का पापी तो हो गया, वो तो मेरा भक्त बन सकता है, लेकिन कई जन्मों के पापी हो, स्त्रियो वैशास शूद्रास्तेपि यान्ति परम गतिम। शूद्र जिसको अधिकार नहीं, शूद्र का अर्थ ये होता है शास्त्र में, शूद्र का अर्थ है जो छोटी छोटी बात पे खुद रोए और दूसरे को भी रुलाए, खुद दुखी और दूसरे को भी दुखी करे। शूद्र मतलब तुच्छ, कुछ भी नहीं कर सकता, हर समय बस बच्चे की तरह खुद रोए दूसरे को भी रुलाता रहे। तो इनको शास्त्र पढ़ने का क्या, उसको पढ़ाओ तब भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे लोग भी अगर मेरी भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से मेरे को पा सकते हैं। तो पहला दुराचारी, फिर पाप योनि, फिर वैश्य स्त्री, वैश्य शूद्र। कि प्रायः ये लोग बहुत बेचारे इतने व्यस्त होते हैं अपने कामों के, इनको उनको वेद पढ़ने का तो टाइम मिलेगा नहीं। तो इन लोगों को भी भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये भागवत मार्ग है जिसमें सबको अधिकारी भगवान ने बना दिया है। ये भगवत गीता की विशेषता है, ये विशेषता है कि सब इसका भक्ति सब कर सकते हैं। तो भगवत गीता रिवोल्यूशनरी शास्त्र है। ये उपनिषद है, गीता को उपनिषद बोलते हैं ना, गीतो उपनिषद। प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में पहला वर्ड लिखा है गीता इज कॉल्ड गीतो उपनिषद। देखा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वर्ड है गीतो उपनिषद। अब गीता उपनिषद है और उपनिषद केवल ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है। पुराने जमाने का जो नियम है उसको जाके पढ़ेंगे तो केवल ब्राह्मण पढ़ सकता है। लेकिन इस उपनिषद को भगवान ने महाभारत के बीच में रख दिया, मध्य महाभारतम। और महाभारत व्यास कहता है मैंने स्त्री वैश्य शूद्र आदि जो और नहीं वेद पढ़ सकते उनके समझने के लिए स्पेशल लिखा है। तो ये उपनिषद ऐसी जगह भगवान ने रखा है जो सब पढ़ सकते, इसलिए इसको उपनिषद कहा और फिर महाभारत के बीच में रख दिया। तो ये भगवद गीता की विशेषता है, और सब शास्त्रों को ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता। और उपनिषद को और वेद के शास्त्र के ज्ञान को बोलते हैं अरण्य ज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? अरण्य ज्ञान। अरण्य का मतलब जंगल, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, और अरण्य का दूसरा अर्थ है जहां रण नहीं हो, मतलब झगड़ा। जंगल में क्या होता है? शांति होती है, झगड़ा नहीं होता है, कलह नहीं होता है। तो अरण्य का मतलब है एकांत का स्थान, वहां बैठ के वेद शास्त्र उपनिषद पढ़े जाते थे। वो हिमालय में जाते थे, कंदराओं में बैठते थे, वन में बैठते थे, ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। गीता की क्रांति क्या है, रिवोल्यूशनरी शास्त्र कैसे अरण्य के ज्ञान को रणभूमि में दे रहे, जस्ट तो रणभूमि में लड़ाई के मैदान में दे रहा है, जहां गोर शोर शमशान और हो क्या रहा है, शंखाओ दद्मो चारों ओर से शंख बज रहे हैं, और इतना शोर हो रहा है कि आकाश कांप रहा है, उसके बीच में गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। तो यह गीता की विशेषता है कि बड़े शहर के बीच में भी बहन में बैठ के गीता सम पढ़ सकते हो, घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। इसे दुनिया के सबसे महानगर न्यूयॉर्क के बीच में प्रभुपाद ने भगवद गीता की शिक्षा दी लोगों को, शोर के बीच में, गाड़ियों चलतों के बीच में, आदमी के आने जाने के बीच में, बच्चों के रोने के बीच में भगवद गीता की शिक्षा दी गई। ये भगवद गीता की विशेषता है, नहीं और शास्त्र ऐसे नहीं पढ़ सकते, अधिकार ही नहीं है। तो ये भक्ति प्रदान शास्त्र है, इट इज मेनली भागवत धर्म का शास्त्र है और भगवान स्वयं ने दिया है। और भागवत शब्द का अर्थ क्या है? भागवत मत जस्ट लाइक भगवान, भागवत भगवान के समान। तो भगवान सबका है, तो ये शास्त्र भी सबके लिए है। अब भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भक्ति सरल भगवत गीता में निर्धारित है। कल हमने 11वें अध्याय विश्वरूप यूनिवर्सल फॉर्म, इसके आखिरी श्लोक के ऊपर चर्चा की थी कि यह भक्ति का सूत्र है। भक्ति का सूत्र मीन्स भक्ति इन नटशेल, जो कहते हैं गागर में सागर। गागर में सागर मतलब पूरे समुद्र को एक मटके में भर लिया जाए। तो सूत्र होता है कुछ शब्द जिसको अगर विस्तार करेंगे तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो ये भक्ति का सूत्र क्या है 11वें अध्याय का? मत कर्म करना, पहला काम क्या है? कर्म मेरे लिए करो। और इसके परपट में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है दिस इज द सेंस ऑफ भगवद गीता, दिस वर्स इज द सेंस ऑफ भगवद गीता। 11th चैप्टर के लास्ट वर्स के परपट की पहली लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं दिस वर्स इज द सेंस ऑफ भगवद गीता। Those who want to approach to Krishna in Krishna Lok, this is the formula and its sense of Bhagavad Gita. Padhna iska, parpat jaake ghar mein padhna iska. Mat karma karna, karma mere liye karo. Krishna kehte hai karma mere, jo bhi kaam karte ho karo, lekin karo mere liye. ये ओपन इनविटेशन है, मेरे लिए काम करो, मतलब शरीर से काम मेरे लिए करो। मत परमो, परम का मतलब है हाईएस्ट गोल, मुझे आपके जीवन का परम लक्ष्य बनाओ। मत परमो मद भक्त, मेरे भक्त बनो। ये तीन भक्ति के मिस विशेष सूत्र हैं, कर्म भगवान के लिए करना शरीर से, मन और बुद्धि से भगवान को ही लक्ष्य मानना, परम लक्ष्य मानना जीवन का, कि वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसी के से कम कुछ भी नहीं लेंगे। नथिंग लेस देन कृष्णा इज एक्सेप्टेबल टू अस इन दिस लाइफ, ये मत परमों का अर्थ है, नथिंग लेस देन दैट। मत परम, शरीर से भगवान के लिए काम, मन और बुद्धि से भगवान को सर्वश्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य मानना, और मद भक्त का अर्थ है दिल से भगवान से प्रेम करना। भक्त मतलब प्रेम, दिल से भगवान से। सो मन बुद्धि और हृदय तीनों का समन्वय हो गया, यह भक्ति का सूत्र है, तीन चीजों से। मां यशोदा जब दिवाली के दिन मंथन कर रही थी दही का स्वयं, तो वो शरीर से मंथन का काम कर रही थी, इसको बोलते मत कर्म। ये कृष्ण के लिए काम कर रही थी, काम काय के लिए कर रही थी, मक्खन निकाल रही थी क्योंकि कृष्ण को देना है। और मुख से कृष्ण के बनाए हुए गीत गा रही थी, मन और वाणी दोनों कृष्ण के ही गुणगान में लगाया हुआ था। ऐसे होता है जिसको याद करना होता है ना, उसके लिए कविता बना दी जाती है। पुराने जमाने में जिसको याद करते थे उसके लिए कविता बना लेते थे, स्वयं बना लेते थे अथवा किसी कवि से बना लेते थे, उसको गुनगुनाते रहते थे। तो हर वक्त तो वो जबान पे रहेगा, जो जबान पे रहेगा वो तो दिमाग में रहेगा। तो मां क्या कर रही थी, शरीर से मंथन कर रही थी, मन और वचन से भगवान का गुणगान कर रही थी। और चिंतन कर रही थी हृदय से, कृष्ण अब उठेंगे, उसके उठने से पहले मक्खन तैयार कर लो। तो चिंतन किसका हो रहा था, प्रेम किसके प्रति था, कृष्ण के प्रति, किसी के लिए मक्खन बना रही। ये तीनों हो गया मत कर्म, मत परमो, मत भक्त। जैसे तीनों काम एक ही लक्ष्य एक है तीनों का, काम भी कृष्ण के लिए कर रही है, चिंतन भी उसका कर रही है, और सोच भी उसके लिए रही है, बोल भी उसके लिए रही है। और हम जब काम करते हैं रसोई में, हम जब रसोई बनाते हैं, माता जी लोग, आप तो बहुत भगवान का चिंतन करके बनाते हैं। कुछ घरों में हमने बनाते हैं, उसने क्या पड़ेंगे, बनाएंगे देगड़ा रखेंगे पकाने के लिए, और कुछ गाना चलता होगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गुड़ा कोई उधर गिरा तो घर परिवार कैसे साथ चलेगा तो चिंतन किस काम किसके लिए, चिंतन किसका हो गया हा? अब ऐसा जिसका गाना होगा उसका घर कैसे साथ चलेगा, जो एक दिल्ली साथ नहीं है तो टुकड़े टुकड़े पहले से कर दिया हरे कृष्ण। मत कर्म करत, मत परमो, मत भक्त, तीनों काम भगवान से संबंधित हो, ये भक्ति का सूत्र है। दो संसार के लिए काम क्या बताए थे, संग वर्जित, जो नास्तिक लोग हैं, अथीस्ट लोग हैं, उनके संग से दूर रहो, उनका संग मत करो। जो भगवान की कथा कीर्तन में जिनका रुचि नहीं है, जो संसार के भोग विलास में आपको लिप्त करना चाहते हैं, भगवान को बुलाना चाहते हैं, उनसे दूर रहो। नॉट ओनली अथीस, प्रभुपाद राइट्स, बट ऑल्सो द कर्म कांडीज एंड मेंटल स्पेक्युलर्स, जो केवल कर्म कांड में रिचुअल्स में लगे हुए हैं लेकिन लक्ष्य को जानते नहीं है, और जो मन से कुछ सोच रहे हैं लेकिन जस्ट मेंटल स्पेक्युलेशन, अवॉइड एसोसिएटिंग विद देम, संग वर्जित। ऐसे लोगों के संग करने से हमारी भक्ति में रुकावट पड़ती है, हाइंड्रेंस, बाधा पड़ती है। लेकिन इनसे द्वेष नहीं करना है, निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से वैर मत करो, ये पांचवा लक्ष्य है, ये भक्ति का पांचवा सूत्र का अंग है। निर्वैर सर्वभूतेषु, सब प्राणियों से, किसी भी प्राणी से वैर मत करो। संग नहीं करो का अर्थ ये नहीं है कि उनसे वैर करो, किसी का संग न करने का मतलब ये नहीं कि उनसे दुश्मनी कर रहे हैं, ये बहुत डेलिकेट है, बहुत डेलिकेट है। प्रभुपाद ने निर्वैर के लिए लिखा है, भक्त को भक्ति करने से इतना सुख आनंद मिलता है कि वो सबका भला करना चाहता है, और सबके भले करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क उठा लेता है। और भक्तों ने ऐसे रिस्क उठाया, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, जीसस क्राइस्ट ने बहुत रिस्क उठाया भगवान के प्रचार करने के लिए, ताकि लोगों का हित करे, क्योंकि किसी को वैरी समझता ही नहीं था, लोगों ने उसको मार दिया, फिर भी उसने भगवान का काम किया। फिर प्रभुपाद कहते, हिंदुस्तान में भी ठाकुर हरिदास था, प्रहलाद महाराज की कथा में, ये सर्वभूत हित रता है, ये सबका हित चाहते हैं, किसी से वैर नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास वासुदेव दत्त, वासुदेव घोष, वासुदेव दत्त, एक दिन पूछता है चैतन्य महाप्रभु से कि इन लोगों का दुख मेरे से देखा नहीं जाता, दुनिया के लोग बहुत दुखी है, इनका दुख देखा नहीं जाता, आप ऐसी कृपा करो इनका सारा पाप मेरे सर के ऊपर धरो, मैं तो जाऊंगा नरक में लेकिन इन सबका उद्धार हो। ये महाप्रभु से प्रार्थना कर रहा है। और इसके भावार्थ में एक हमारे इस्कान के सन्यासी कहते हैं, तो लोग तो प्रचार करते हैं कि भाई हजरत ईसा इतना बड़ा उद्धार है, इतना उद्धार है, लेकिन ऐसा कौन हो हुआ है आज तक जिसने कहा कि सबका पाप मेरे ऊपर, तो आप जाओगे तब वो पाप आपका लेगा, ये तो घर बैठे पाप मांग रहा है कि दुनिया के सारे पाप मेरे को दो। और महाप्रभु ने उत्तर क्या दिया, तुम्हारे लिए ये विचित्र नहीं है वासुदेव, तू साक्षात प्रहलाद, तू प्रहलाद है, विचित्र नहीं है। प्रहलाद में तो यही मांगा था, हिरण्यकश्यप जब कहा क्या वरदान चाहिए तब क्या बोला था, दुनिया का दुख देख नहीं सकता हूं, इनका सारा दुख मेरे को दो दो, मैं नरक भोगने के लिए तैयार। तुम्हें साक्षात प्रहलाद, तुम्हारे लिए विचित्र नहीं कछु, विचित्र नहीं है आपके लिए, इट्स नॉट स्ट्रेंज फॉर यू, आप जो मांग रहे हैं ये आपके अनुकूल है, आप ठीक कह रहे हैं। और फिर महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण शक्तिमान है, कृष्ण के पास इतनी शक्ति है कि वो सबका दुख दूर कर देगा, और पाप तुम्हारे ऊपर क्यों देगा। कृष्ण शक्तिमान, कृष्ण कमजोर नहीं है कि तुम्हारे को पाप भुगताएगा, लेकिन तुमने इच्छा की है ना। और फिर एक बहुत सुंदर श्लोक कहा महाप्रभु ने, कृष्ण के पास और कोई काम नहीं है, नहीं अन्य कृत, कृष्ण नहीं अन्य कृत, भक्त वांछा पूरी करे, भक्त की इच्छा पूरी करता यही काम है, और कोई काम नहीं। कृष्ण के पास और कोई काम नहीं है सवाय भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, केवल भक्त इच्छा करे कृष्ण उसकी पूरी करता है। आप ये इच्छा कर रहे हो कि सबको सुखी हो जाए तो कृष्ण इसको निश्चित पूरी करेगा। कैसे पूरी करेगा, महाप्रभु कहते हैं जिसके लिए आप कहें वो तो भक्त बन जाएगा, जैसे वो भक्त जाने बन जाएगा उसके पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे, आप क्यों पाप भोगेंगे। आप इच्छा किसी के लिए करो हित की तो वो भक्त बन जाएगा कृष्ण की कृपा से, सही बने वैष्णव, जिसका नाम लो के इसका हित होना चाहिए वो वैष्णव बन जाएगा कृष्ण कृपा से, तो फिर वो तो पाप से अपने आप मुक्त हो जाएगा। ये बहुत सुंदर चेतना महाप्रभु का और इस भक्त का वार्तालाप है। तो निर्वैर सर्वभूतेषु को प्रभुपाद ने लिखा है, ऐसे भक्त जो सबका हित करना चाहते हैं। और अब भक्ति के प्रोग्रेस की यार्ड स्टिक भी ये है, जो पैमाना है, जो यार्ड स्टिक है, द मोर रिस्क यू टेक फॉर कृष्णा द मोर नियर यू फील प्रेजेंस ऑफ कृष्णा। ये मोर रिस्क यू टेक मोर नियर यू फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण। जितना कृष्ण भक्ति के प्रचार में हम रिस्क उठाएंगे, इसलिए एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन में कह रहे थे, इफ यू वांट कृष्ण प्रेम देन गो टू महाप्रभु। कृष्ण प्रेम चाहिए तो महाप्रभु के पास जाओ, बट यू वांट फेवर ऑफ महाप्रभु गो टू नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु का अगर आपको फेवर चाहिए तो नित्यानंद प्रभु के पास जाओ। और फिर बोलते हैं, इफ यू नीड फेवर ऑफ नित्यानंद देन गो एंड प्रीच टू द पीपल लाइक जगाई एंड माधाई। अगर आपको नित्यानंद की कृपा चाहिए तो बहुत गिरे हुए अपराधियों से महान अपराधियों के बीच में जाके प्रचार करो, then you will get the mercy of Nityananda, Nityananda's mercy you will get Chaitanya Mahaprabhu's blessing, and then you will get Krishna prem. This is the formula. और इसी प्रभुपाद के कथन को फिर प्रभुपाद के शिष्य ने कहा, प्रभुपाद नित्यानंद की कृपा का पात्र थे कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में जगाई माधाइयों के बीच में जाकर कृष्ण प्रचार किया, हिप्पीज के बीच में, तब नित्यानंद की कृपा का भाजक हुए और नित्यानंद की कृपा से महाप्रभु की शक्ति के द्वारा विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी शुड टेक रिस्क फॉर प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। We have to come out of our comfort zone. प्राय हम कंफर्ट जोन में प्रचार हम इस्कान का हुआ किस वक्त में कृष्ण भावना का प्रचार उस वक्त था जब मंदिर कोई नहीं था, कोई सेंटर नहीं बना था, एक आधा पुस्तक क्या 10 पेज का भागवत दर्शन बैक टू गार्डेड मैगजीन था और भक्त जाके प्रचार करते। अब हमारे पास बड़े लेविश टेम्पल है, करोड़ों रुपए के बड़े बड़े फर्स्ट क्लास व्हाइट मार्बल के बने हुए टेम्पल है, इतनी सारी फैसिलिटीज है, गाड़ियां हैं, मोटरें हैं। उन भक्तों ने जो प्रचार किया था उनके स्थिति को देखिए कि कुछ था ही नहीं, और रोड के ऊपर चल के अलग अलग जगहों में, अलग देश में, अलग लोग जगहों में कैसे प्रचार किया था। जस्ट इमेजिन दैट, ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, ये तो गत 20-25 वर्ष के अंदर हमने देखा है आंखों से। तो दोज हु हैव टेकन रिस्क कृष्णा हैज रेसिप्रोकेटेड विद देम एंड दे एस्टैब्लिश्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस इन प्लेसेस विच वर very difficult to really trade to or enter in. Risk uthane, then you really you see how Krishna is very near to you. To Krishna ki maujoodgi ko, Krishna ke presence ko feel karna hai, then we should be ready to preach the message of Bhagavad. This is ek Bhagavad Gita mein hi keval ek shlok aisa milta hai. One is very dear to me who preached the message of this Bhagavad Gita. Nobody was dear to me in past, nobody is going to be near to me in future. Na bhavish mein tha, na bhoot mein, na bhavish mein hone wala hai, na bhoot kaal mein tha. Jo mere Bhagavad Gita ka prachar karta hai, he is most dear to me. So Krishna prem prapt karne ke liye भगवद गीता को समझना और फिर इसको प्रचार करना। महाप्रभु कहते जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जन्म सार्थक करी मतलब अंडरस्टैंड भगवद गीता, अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ कृष्ण। परोपकार मीन्स निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से वैर नहीं करना है। कैसे भी अब कृष्ण का इस मोमेंट में मैं मॉरिशस में जब हमारा साल में एक दो बार जाना होता है तो पुराने भक्त कहते हैं पहले कृष्ण कॉन्शियस प्रचार सर्वजनिक किया करते थे हम। सर्वजनिक मीन्स फॉर ऑल पीपल। अब ऐसे है कि ओनली वी गो टू दोज हू ऑलरेडी हैज फेथ इन भगवद गीता और रामायण और समथिंग जो ऑलरेडी है। लेकिन प्रभुपाद डिड नॉट commit himself to only one community. Prabhupada's mood was more broader. His mood was message of Krishna is for all. Krishna consciousness is eternal religion of all living entities. It is for all. तो निर्वैर सर्वभूतेषु का इसका मतलब है अभी किसको हम ये कृष्ण भावना नहीं देना चाहिए चाहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि वी हैव हमसे हमारे कुछ वैर है उससे तब नहीं दे रहे हैं ना। So, निर्वैर सर्वभूतेषु की जो पर्पट लिखा है प्रभुपाद ने बहुत अद्भुत पर्पट है दैट यू टेक रिस्क टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस बट इट शुड बी कैलक्यूलेटेड रिस्क, इट शुड नॉट बी अनकैलक्यूलेटेड रिस्क, इट शुड बी इंटेलिजेंट। अनइंटेलिजेंट नहीं हो, इंटेलिजेंट होनी चाहिए। सो ये भक्ति का सूत्र सुनकर 12वां अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। नाउ अर्जुन इज आस्किंग क्वेश्चन। अर्जुन ने क्या अभी तक भगवान ने क्या डिस्क्राइब किया है? विश्वरूप यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, इम्पर्सनल एस्पेक्ट भी अपना बताया और पर्सनल रूप में विष्णु के रूप में भी हुए और फिर कृष्णा अपने श्याम सुंदर रूप में खड़े हो गए। दिस मच इज डिस्क्राइब टिल नाउ। 11th चैप्टर के लास्ट वर्स में है या 12th के फर्स्ट वर्स में परपर्ट में है कि इन सेकंड चैप्टर कृष्णा इज डिस्क्राइब जीव आत्मा इज नॉट मैटर। आत्मा आत्मा जो है वो चेतन है, जड़ नहीं है, मैटर है। 7th चैप्टर में आत्मा भगवान के साथ संबंध है। 8th 9th चैप्टर तक भक्ति का थोड़ा सा रास्ता आगे बताया है। 11th चैप्टर तक आते आते ये तीन बातें हो गई, आत्मा, फिर भगवान इम्पर्सनल, विराट रूप और पर्सनल फीचर्स। तो अब अर्जुन के लिए प्रश्न क्या है, 12th चैप्टर और चैप्टर ओपन्स विद दिस क्वेश्चन। अर्जुन वाच, बोलो अर्जुन वाच, क्या बोला अर्जुन ने, बोलो। ये अर्जुन के वचन है, अर्जुन वाच मीन्स दीज आर दी वर्ड्स ऑफ अर्जुन। एवं सतत युक्ता ये भजताम परियुपा, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम परियुपासते, ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्मः। अब ये एक अर्जुन का प्रश्न है, ओनली वन वर्स। अर्जुन क्या कहते हैं, तेषां, तेषां का मतलब 11th चैप्टर की तरफ इशारा कर रहा है, तेषां वो लोग, तेषां सतत युक्ता नाम, जो सदा, सतत का मतलब सतत, सतत का मतलब सदा के लिए, सदा के लिए मतलब काल की बात है, हर समय, हर समय। और सतत का अर्थ एक और भी है, स मतलब साथ, तत मतलब तार, जैसे नारद तार वाला उठा के तंबूरा और बाजार के अंदर घूमते हुए गाता है भगवान का गीत। सतत का अर्थ हर समय बगैर किसी शर्म और भय के खुली बाजार के अंदर हाथ ऊपर करके मृदंग ढोल पीट कर जो कीर्तन करता है, ये सतत का और अर्थ है। सतत, सतत मतलब तार के साथ, सदा के लिए। ये भगवत भागवत में एक श्लोक है, क्या श्लोक है, उद्गायन्ति नृत्यन्ति, जोर से गाता है, नृत्य करता है, कभी रोता है कभी हंसता है, ऐसा एक भक्त पुनान भुवनम पुनाति, पूरे भूमंडल को पवित्र कर सकता है। सत भक्त, ये भक्त की बात कहने जा रहे हैं भगवान, क्या कौन सा भक्त जो सदा निर्भय होकर, संसार के सारे भय और निर्लज्ज होकर भगवान का गुणगान करता है, ऐसा भक्त सतत हर समय। तेषाम सतत युक्तानाम, युक्तानाम, युक्तानाम का अर्थ है एंगेज, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन लिखिए एंगेज्ड, और युक्तानाम का अर्थ होता है जो जो जुड़े हुए हैं आपसे, यूनाइटेड विथ यू, यूनाइटेड विथ यू इन थॉट, थॉट वर्ड्स डीड्स एवरीथिंग। एवं सतत युक्ता ये भक्तास, ऐसे भक्त आपके, एवं सतत युक्ता ये, एवं सतत युक्ता ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये का अर्थ है जो भी सदा के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, ये का मतलब एनीबडी, एनीबडी का अर्थ है, ये भगवान का वचन है और भगवान ने सबको अधिकार दिया है, एनीबडी, कोई आदमी कहीं का भी हो, किसी जगह का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी जाति का हो, कोई भी हो, ये का मतलब है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, नेशनैलिटी, इरेस्पेक्टिव, ये का अर्थ ये होता है, ये मीन्स एनीबडी, कोई भी, ओपन इन्विटेशन है ये। एवं सतत युक्ता ये, जो भी सतत सदा के लिए बड़े प्रेम पूर्वक आनंद से आपका, आपके सेवा में लगा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, भक्तास, भक्त त्वाम आपको, कृष्ण आपको परियुपासते, पर उपास्ते, उपास्ते तो वही है, उपास्ते का मतलब उपासना करना, पूजा करना, पास में बैठना, उपासना आसन नजदीक लगा के बैठे। परियोपास्ते का अर्थ क्या है? परियोपास्ते का एक अर्थ तो यह है कि वो आपका भजन आपको प्राप्त करने के लिए करता है, आपसे कुछ नहीं प्राप्त करना चाहता, आपको प्राप्त करना चाहता है। और एक इसका भाव यह है वो सब काल में है, सततम का मतलब है हर समय, और यह है परियोपास्ते हर जगह। हर जगह का मतलब है जहाज में है कि पानी में है, घर में है कि बाहर है, कहीं भी। कभी कभी आदमी कहते हैं भाई, एक महाप्रभु के जीवन में एक दृष्टांत आता है, दिस इज वन इंसिडेंट इन चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट टाइम। महाप्रभु वी वॉज गोइंग टू एंसर द कॉल ऑफ नेचर, जब जा रहे थे सोच में तो जवान को दांतों के बीच में दबा दिया। तो एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम गोपाल था। गोपाल ने कहा, महाप्रभु ये जवान को दांतों के बीच में क्यों दबा दिया? महाप्रभु ने कहा, ये जवान हमारी इतना हरे कृष्ण उच्चारण में आदत इसकी बन गई है कि ये चुप नहीं करती है, और मैं शौच में जाता हूं वो जगह अच्छी नहीं है, वो गंदा जगह है, उधर भगवान का नाम उच्चारण कैसे करो, इसलिए दांतों के बीच में जवान को दबा के रखा है। और छोटा बच्चा गोपाल कहता है, अगर महाप्रभु वहां प्राण निकल जाए तो डेथ कैन कम देयर टू। महाप्रभु वो गोपाल तुम मेरे गुरु हो। उस दिन के बाद उसका नाम हो गया गोपाल गुरु, गोपाल गुरु। वो महाप्रभु कहते आप गुरु हैं, और तब से महाप्रभु ने जबान को दबाना बंद कर दिया कि वहां भी भगवान के नाम लेने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान का नाम इतना पवित्र है कि कोई अपवित्र चीज रह ही नहीं सकती है उसके सामने। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर जगह हर समय सतत से होता है, और हर जगह इससे अर्थ होता है। उपासना कौन सी हो, हर जगह उपासना की जा सकती है। भाई भगवान हर जगह है ना, इज एवरीवेयर, तो हर जगह भगवान की उपासना की जा सकती है। तो भक्ति सब जगह सब समय सब लोग कर सकते हैं। यही प्रश्न पूछा है श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज ने गंगा के तट के ऊपर ऋषियों के समाज के अंदर, जिसके अंदर व्यास, नारद, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि आदि सब ऋषि अपने शिष्यों के संग में थे, और वहां सुखदेव गोस्वामी बाद में पधारे, उनसे एक क्वेश्चन पूछा है। उसके दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, पार्ट वन एंड पार्ट टू होता है क्वेश्चन का। पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का, सब लोग सब समय सब जगह कोई एक काम करें जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सकें। सब लोग सब समय सब जगह, ये पार्ट वन है। पार्ट टू है जिसका अंत समय निकट हो उसको क्या करना चाहिए। One who is near to death, what he should do? Mriyamanaya, yata mriyamanaya. One who is near to death, what he should do? What is the prescribed duty for him? ये part two है। Part one ये है, सब लोग सब समय सब जगह एक ही कौन सा कर्तव्य करें जो उनको भगवत प्राप्ति हो। ये वैष्णव का हृदय है। मरते समय भी पहले दूसरे का हित चाहता है, फिर अपनी बात करता है। First he is asking the question for the deliverance of the rest of the public, and then he is asking some question pertaining to his own circumstances. और जवाब क्या देते हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्माद, इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर पहले पार्ट वन का ये है, ईश्वर हरि, ईश्वर हरि सर्व आत्मा भगवान, चार शब्द बोले हैं। सर्व आत्मा, सर्व आत्मा का मतलब जो सबसे प्रेम करता है, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है। सर्व आत्मा मीन्स वन हु लव्स ऑल, one who is residing in every individual's heart as a Paramatma. सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं क्योंकि प्रेम करते हैं. ईश्वर जो नियंता है, कंट्रोलर है. हरि जो अपने भक्तों का दुख हर लेता है. हरि की परिभाषा चैतन्य महाप्रभु ने क्या की है? हरि के तो बहुत अर्थ है लेकिन मुख्य अर्थ महाप्रभु कहते हैं मुख्य अर्थ भक्त दुख हर ले. हरि का मुख्य अर्थ है अपने भक्तों का दुख ताप संताप हर लेता है. और महाप्रभु कहते हैं और प्रेम देई मन हरे, इतना प्रेम देता है कि मन भी हर लेता है. ये दो मुख्य अर्थ हरि के महाप्रभु की है कि हरि के तो अनंत अर्थ है, अनलिमिटेड मीनिंग ऑफ द हरि, बट द टू आर द स्पेसिफिक मीनिंग्स. अपने दुखों का ताप संताप भक्तों के, अपने भक्तों का दुख ताप संताप हर लेता है और इतना प्रेम देता है कि मन भी हर लेता है. प्रेम देई मन हरे, तो हरि वो जो प्रेम दे के मन हरता है. भगवान उसका क्या करना चाहिए? श्रोतव्यम कीर्तत्व्यम स्मृतव्यम यतिच्छति अभयम्. ये पार्ट ए का उत्तर क्या है? उसके बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए अगर भय से मुक्त होना चाहता है तो. यतिच्छति अभयम्, भय से मुक्त. भय क्या है संसार में? सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है. मृत्यु सबसे बड़ा भय है. काल के भय से सब डरते हैं. जो काल के भय से मुक्त होना चाहे उसको ये काम करना चाहिए. स्मृतव्यम, हाँ, श्रोतव्यम स्मृतव कीर्तव्यम स्मृतव्यम. श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना. श्रवण करना, जब कोई सुनाने वाला है तो सुनो, जो सुनाने वाला नहीं है तो कीर्तन करो. जब दोनों काम नहीं करें तो उसका स्मरण करो. स्मरण में उसको याद करो जो पहले सुना है, अगर भय से मुक्त होना चाहते हो तो. और आश्चर्य यह है, आश्चर्य वाली बात यह है, इसको ठीक तरह समझ लो. हमारे शास्त्रों का उद्देश्य है मृत्यु के भय से मुक्त करना. द पर्पज ऑफ गिविंग मैसेज ऑफ भगवद गीता टू अर्जुन इज टू रिलीव हिम फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ. मृत्यु से डर रहा था ना अर्जुन, की ये सब मर जाएंगे यही तो डर था ना. और चारों ओर युद्ध के मैदान में मारना ही था एक दूसरे को ना. उस मारने के, मरने के मोह से मुक्त करना गीता का उद्देश्य है. और भागवत कब दी गई है? जब परीक्षित 7 दिन में मृत्यु होना था, उस मृत्यु के भय से उसको मुक्त करना था. तो मैसेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ गीता एंड भागवत इज टू मेक अस फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ. यदि चंति अभयम, भय से मुक्त होना चाहते हैं तो ये काम करो. एवं सतत युक्ता ये भजताम त्वाम, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम परिउपासते. जो आपकी उपासना हर समय हर जगह आपके साथ जुड़े हुए आपकी उपासना करते हैं. ये पार्ट, ये क्वेश्चन का पार्ट, यानी एक पक्ष है, वन साइड ऑफ द क्वेश्चन. द अपोजिट साइड क्या है अभी? दूसरी, अर्जुन दूसरी साइड पूछता है. ये चप्याक्षरम अव्यक्तम, दो चीजें बताइए. अक्षर निराकार ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म निराकार भगवान को बोलते हैं. इम्पर्सनल, अक्षर मीन्स इम्पर्सनल, बियॉन्ड सेंसेस. अव्यक्तम, व्यक्ति बोलते हैं आदमी को. भाई व्यक्ति कहां गया? ये बोलते हैं ना, वो व्यक्ति कहां है? व्यक्ति मीन्स पर्सन, अव्यक्त मीन्स इम्पर्सन. तो ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषाम, इन दोनों में से. ये दूसरा पक्ष है, एक साइड दूसरी साइड. एक साइड भक्त सदा सब जगह सब समय प्रेम से आपकी भक्ति करते हैं, और दूसरे जो आपको अव्यक्त अक्षर ब्रह्म मान के पूजा करते हैं. इन दोनों में से के योग वित्मय है? कौन सा योग वित्मय है? योग वित्मय का अर्थ क्या है? योग मतलब जुड़ा हुआ. वित्मय का अर्थ क्या है? वित्मय है डिग्री, है सुपरलेटिव. योग वित्त, योग वितर, योग वित्मह, जैसे गुड बेटर बेस्ट. तो योग वित्मह मीन्स व्हिच वन मेथड ऑफ वर्शिप यू कंसीडर द हाईएस्ट. ठीक तरह से छठे अध्याय का आखिरी श्लोक देखेंगे तो भगवान ने पहले ये बता दिया है, योगी नाम अपि सर्वेशां मदगते अंतरात्मा श्रद्धावान ये भजते मां सेमे युक्तत्वो मतः। युक्तत्व मत है और योगवित्म दोनों का अर्थ एक ही है, युक्तत्म और योगवित्म दोनों का अर्थ एक ही। योगियों में वो सर्वश्रेष्ठ है जो श्रद्धा पूर्वक मुझ में मन लगाता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अब एक बात समझ लीजिए, मन की बात आ रही है, मन लगाता है और भक्ति के लिए भगवान एकदम आगे चल के बात मन की ही करेंगे। और भगवत गीता को पढ़ना नहीं भी आए तो ये चित्र देख लीजिए, सी दिस ब्यूटीफुल ऑन द बैक आल्सो यू कैन सी, दिस इज द मैसेज ऑफ भगवत गीता इन फिगर। सारी भगवत गीता का सार इस फिगर के अंदर है। व्हाट इज इन दिस फिगर? एक रथ है, वन चैरियट है, हॉर्सेस पुलिंग द चैरियट एंड हॉर्सेस रीन्स हैं, लगाम है घोड़ों को। लगाम किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में लगाम है। कृष्ण कहां बैठा हुआ है? सारथी की जगह पे। और पीछे रथ में कौन बैठा हुआ है? अर्जुन। ये सब समझ में आ रहा है? ठीक है। ये शरीर रथ है, शरीरम रथ, ये हमारा शरीर रथ है। इंद्रियां इसके घोड़े, आंख नाक कान, ये जो इंद्रियां हाथ पांव हमारी हैं, ये इसके घोड़े। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, ठीक है। और आत्मा रथी है, आत्मा यात्री रथी है। द सोल इज द पैसेंजर, इंटेलिजेंस इज ड्राइवर, माइंड इज स्टीयरिंग एंड द सेंसेस आर हॉर्सेस। अब इसमें देखिए क्या चीज भगवान के हाथ में और कहां भगवान बैठा है। कृष्ण के हाथ में क्या है? रीन्स। कहां बैठा है कृष्ण? सारथी की जगह पे। आपने एक हिंदी में कभी लोगों को गाते हुए ये भजन सुना है, मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ, सुना है? नहीं। मेरी डोरी तेरे हाथ लोग बोलते हैं, ये गुजरात में विशेष रूप से सौराष्ट्र में बोलते हैं, मेरी डोरी तेरे हाथ। मेरी मतलब मेरी, डोरी का मतलब रस्सी, तेरे हाथ आपके अंदर डोरी कौन सी? मन। ये मन रूपी लगाम भगवान के हाथ में देना है। और भगवान को कहां बिठाना है? बुद्धि में। और बारहवें अध्याय में ये दो ही बातें मिलेंगी आपको, मई एव मन आदस्त्वा मई बुद्धि में निवेशया, मन मेरे को दे दो, बुद्धि में मुझको बिठा दो। सारी भगवत गीता में दो ही बातें कृष्ण बार बार कहेगा, मन मुझको दे दो, बुद्धि मुझ में लगाओ। ये चित्र भगवत गीता का सार है। बुद्धि में कृष्ण को बिठाना है और मन भगवान के हाथ में दे देना है। लेकिन एक और चीज भगवान के हाथ में, वो भी देख लो, दिख रही है इसमें? विप। परपन्न पारिजाताय, कृष्ण को बोलते हैं परपना। किसको बोलते हैं परपना? का मतलब जो पांव पकड़ ले। शरणागति के दो स्तर है, सरेंडर अंग्रेजी का शब्द है, इज ए इंग्लिश वर्ड विच इज नॉट इक्वेलेंट टू शरणागति। सरेंडर कब करते हैं? कोई बंद गाला इधर पिस्टल रखेगा, हाथ उठा लेगा, ये सरेंडर हो गया। सरेंडर से बेसिकली दी व्हाट यू कैन, जो ध्वनित क्या होता है, व्हाट द सेंस यू गेट फ्रॉम सरेंडर, डर के मारे हथियार उठा लिए। पर शर्म के, शरणागति इज आउट ऑफ लव। तो शरणागति, सरेंडर शब्द इज नॉट राइट वर्ड। शरणागति, हमारे पास दो शब्द है शरणागति, एक परपना और जैसे अर्जुन दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में भगवान को क्या कहते हैं? शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम परपनम। परपनम का अर्थ यह है पांव पकड़ लेना। ये पांव का पंजा होता है, ये नीचे पांव, ये तलवा, ये सोल, ये डार्सम ऑफ द फुट, ये एंकल ज्वाइंट नीचे पांव की, इससे ऊपर के हिस्से को पकड़ना। पांव से पांव कहां से पकड़ते हैं, किसी का पकड़ना होता है, आदमी पांव कहां पकड़ता है उसको बोलते हैं परपना, भगवान का पांव पकड़ लेना। ये सरेंडर का पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है तलवे के नीचे रख देना, अपने आप को भगवान के चरणों के नीचे रख देना। देखो महाप्रभु क्या कहता है शिक्षा अष्टक में, धूलि सदृशम विचिन्तया, आपके चरण की धूलि हूं मैं। ये शरणागति का हाईएस्ट स्टेज है। लेकिन वहां कहते परपन्न पारिजात है, कृष्ण कैसा है, पारिजात जैसा है। क्या पारिजात का अर्थ क्या है, जो मांगो वो मिलेगा। कल्प वृक्ष बोल, कृष्ण कल्प वृक्ष है, जो उसके शरण में जाएगा उसको सब कुछ मिलेगा। लेकिन कल्प वृक्ष के पास जाके मांगना तो अच्छी चीज चाहिए ना। एक बार नारद के साथ एक भक्त कहीं मिल गया, नारद ने बोला आपको स्वर्ग घुमा के आता हूं चलो। तो सड़क तक पहुंच गए तो एक कल्प वृक्ष के नीचे भक्त को बोला तुम यहां बैठो, मैं वैकुंठ से होके आता हूं। वो भक्त बैठा बैठा कहता है बहुत थक गया हूं, पलंग आ जाता तो लेट जाता। अब कल्प वृक्ष था, उसने सोचा तो पलंग आ गया। अब पलंग के ऊपर लेटने के बाद बोला कुछ खाने के लिए होता ना बड़ा अच्छा होता, तब तक तो भोजन की थाली आ गई। बोला खा तो गया हूं, इतने पांव थके हुए, कोई पांव दबाने वाला होता ना तब तक तो बहुत सारे अप्सराएं आ गई चारों ओर से तेल लेकर उसके पांव दबाने लगी। अब इसको डर लगा और डर में क्या देखता है कि मेरी पत्नी देखती तो झाड़ू लेके मारती, और इतनी देर में उसकी पत्नी झाड़ू लेके आ गई। ये तो कल्प वृक्ष तो था ही। अब ये भागा नारद सामने से आ रहा, नारद ने बोला क्या हुआ, बोला वो देखो झाड़ू लेके आ रही। बोला मूर्ख कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान नहीं मांगा, उधर भी जाए तेरे को झाड़ू ही नजर आया। तो हम वहां जाके बैठ के कल्प वृक्ष के पास भी झाड़ू मांग लेते हैं। यानी भगवान की भक्ति करके मांगते क्या है। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर आपके पास अचानक आ जाए यहां और पूछे कि आपको क्या सहायता चाहिए, और कोई कहेगा एक डजन केला दिला दीजिए, कोई मवाली बोलेगा एक बीड़ी पिला दीजिए, तो इसको बोलते मूर्खता। परपन्ना के पास जाओ तो उसी को मांग लो ना। परपना पहाड़ी जाता है तो त्रिवे त्रैक पाणी, हाथ में क्या है, दो चीजें, एक में लगाम है और एक में विप है, चाबुक है। काय के लिए, घोड़े ने भागे, घोड़ों को इंद्रियों को संयम में रखने के लिए हम नहीं रख सकते लेकिन भगवान रख सकते हैं। इसलिए भक्त एक भजन गाता था, कहता था गोविंद गोपाल गाते चलो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो, देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के कोड़े लगे। भगवान का नाम जपो लेकिन इंद्रियों को संयम में रखो, इसके लिए कोड़े लगने चाहिए। तो भगवान ने हाथ में यह भी लिया, ज्ञान मुद्रा है कृष्णा है गीता अमृत दोहे नमः, और कृष्ण का केवल ये शक्ल देखो कि हाथ में चाबुक है लगाम है लेकिन ज्ञान की मुद्रा में खड़ा है, गीता का अमृत दोहकर दे रहा है, उसको देखने से आपकी इच्छा सब पूरी हो जाएगी। तो अर्जुन का ये प्रश्न है कि दोनों में से, दोनों उपासनाओं में से, बात उपासना की है, वही भगवान एक ही है, उपासनाएं दो हैं, इन दोनों उपासनाओं में से, उपासनाएं मतलब भगवान की पूजा की पद्धति, कौन सी योगवित में है, कौन सी सर्वश्रेष्ठ है। इससे एक को ऊपर नीचे समझ के, भगवान एक ही है इसलिए झगड़ा कराता है अगर ये आपका प्रश्न, तो फिर तो ठीक नहीं है। लेकिन भगवान आप अपना राय दीजिए कि योगवित में कौन है, योगवित में कौन है मतलब आपसे जुड़े हो, आप किसको मानते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ उपासना है। दूसरे श्लोक में भगवान ने निर्णय दे दिया। नेक्स्ट वर्स में श्री भगवान वाच, बोलो श्री भगवान वाच, Mayavesh mano ye mam.
Mayavesh mano ye mam.
Nitya yukta upasate.
Nitya yukta upasate.
Shardhaya paryopetas.
Shardhaya paryopetas.
Teme yuktat mamatah.
Teme yuktat mamatah.
Ye Bhagwan ne apna nirnay de diya. He has given his verdict. अब इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, कल टाइम हो गया। मई आवेश मनो ये माम, जिसका मन मुझ में आवेष्ट है, नित्य युक्ता हर समय मुझसे जुड़ा हुआ है। मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया। एक बात सिर्फ आज आपको मैसेज ये है, भक्ति योग की जननी श्रद्धा है। भक्ति की जननी श्रद्धा है। भक्ति योग का श्लोक का अध्याय श्रद्धा से शुरू होता है। दूसरे अध्याय में श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है और भक्ति योग का आखिरी श्लोक भी श्रद्धा से एंड होगा। भक्तास्ते क्या है आखिरी श्लोक क्या है? भक्तास्ते अति में श्रद्धाना मत परमा, भक्तास्ते अति में प्रिय श्रद्धाना मत परमा। ये आखिरी श्लोक के 12वें अध्याय का श्रद्धाना मत परमा, जो श्रद्धा तो श्रद्धा से शुरू होता है और श्रद्धा से ही भगवत गीता के 12वें अध्याय का संपूर्ण होता है। तो भक्ति के लिए मुख्य चीज क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा भक्ति की जननी है। तो श्रद्धा मुख्य अंग है भक्ति का। शुरुआत भी श्रद्धा से होती है और अंत तक भी श्रद्धा ही साथ देती है। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण। श्रद्धा है क्या? महापुरुष ने श्रद्धा के लिए क्या कहा? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का अर्थ ये विश्वास है और ये दृढ़ निश्चय है। कृष्ण कृत्य किए सर्व सिद्ध होए, हम कृष्ण की भक्ति करें तो सब काम अपने आप हो जाएगा। श्रद्धा का अर्थ ये है। महाप्रभु के लक्ष्यों में शब्दों में श्रद्धा का अर्थ ये है कि एक भगवान की भक्ति करने से सब काम अपने आप हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति कृत, कृष्ण कृत किए, कृष्ण के लिए काम करने से सर्व सिद्ध हो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो इस श्लोक के ऊपर कल आगे भक्ति योग को बढ़ाएंगे और फिर तीसरे चौथे और पांचवें तीन श्लोकों में जो दूसरा पक्ष है अव्यक्त अक्षर ब्रह्म, उसमें 8 विशेषण है, 8 डिफरेंट नेम एडजेक्टिव है और फिर कहते हैं वो भी मेरे पास आते हैं और फिर कहते हैं वो भी, अर्जुन कहते हैं वो भी आपके पास, दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान कहते हैं उस रास्ता बहुत कठिन है, उसमें दुख ज्यादा है, क्लेशो अधिकतर तेषाम, उसमें क्लेश अधिक है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया। फिर भगवान 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 श्लोकों में ग्रेडेशन बताते हैं भक्ति के, ये करो ये नहीं कर सकते हो, ये करो ये नहीं कर सकते, ये करो ये नहीं कर सकते, ये करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि रिजल्ट अलग मिलेगा। आम पड़ा है मैंने लेना है, तुम ऐसे करो, लंबा आदमी हो तो हाथ से उतार लो, बोला मैं लंबा नहीं हूं तो बोलो कुर्सी रख के उतार लो, बोला कुर्सी नहीं, बोला पत्थर मार के उतार लो, लेकिन मिलेगा आम ही। इसका ये नहीं समझना है कि भाई ये नहीं करेंगे तो फिर भगवान नहीं मिलेगा। मिलेगी भक्ति, लेकिन उसके लिए तुम्हारी योग्यता के अनुसार रास्ता बता रहे हैं। और फिर 12वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक 8 श्लोकों में भक्त के गुण बताए, कैसा भक्त भगवान को प्रिय है। 33 के करीब भक्तों के गुण बताए, कौन सा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये गुण अपने अंदर पैदा करने चाहिए जो भगवान को प्रिय लगते हैं। तो ऐसे भक्ति योग का 12वां अध्याय, और 12वें अध्याय में वैसे भगवद गीता संपूर्ण हो गई। फिर भक्ति को ही निरूपण करने के लिए टू एस्टेब्लिश भक्ति एज ए सुप्रीम सब्जेक्ट ऑफ भगवद गीता बाकी अध्यायों में, और 13वें अध्याय में आएगा अभी बेचारे न भक्ति योगे न, फिर ये 13वें अध्याय में ये भक्ति विषय जाएगी, 14वें अध्याय में भक्ति आएगी, 15वें अध्याय में तो पुरुषोत्तम योग भक्ति है। तो हर एक चीज में फिर भक्ति को ही मुख्य अंग करके प्रतिष्ठित करना है। कहां जाके? सर्वधर्मान परिजमाम एकम शरणम, भक्ति का परिकाष्ठा है। Then only to establish bhakti is the last. The all other chapters are only establishing bhakti. इसके बाद भक्ति का ही विस्तार समझाने के लिए भगवद गीता है। So Bhagavad Gita is a Bhagavat Dharma. Is specifically Bhakti Yoga is the essence of whole Bhagavad Gita. Hare Krishna. किसी का कोई प्रश्न है नहीं तो टाइम पूरा हो गया आज की कथा यहां समाप्त हरे कृष्ण